शब्दार्थ कंडो हो कंडु मुनि की प्रमलोचया प्रमलोचा नाम की अप्सरा से लब्धा प्राप्त किया कन्या पुत्री कमल लोचना कमल जैसे नेत्रों वाली ताम उसको च भी अपविद्धाम छोड़ी हुई जगृहु स्वीकार किया भूरुहा वृक्ष नृपनंदना हे राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रपाद जी के द्वारा। शिला प्रपाद की अनुवाद। हे राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वे स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य, जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो उठता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव हैं, किंतु वे ब्रह्मा इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। ये सारा संसार ऐसे ही ईर्ष्या से पूर्ण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि ये संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है, जो यहां पर श्री भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार इंद्रकंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए प्रमलोचा को भेजा। ऐसी घटना विश्वामित्र के साथ भी घटित हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र की परवाह ना करके विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। इंद्र को कंडू ऋषि का व्रत भंग कराने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रमलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उसे एक कन्या को जन्म दिया। यहां पर इस कन्या को कमल नयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रमलोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले राधा रास बिहारी के सब भक्तों का, खासकर प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मेरे शुद्धिकरण के लिए कहा कि आज की भागवतम क्लास आप देंगे। तो प्रभु जी की हमेशा मेरे पे कृपा होती है, जब भी राधा रास बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं तो प्रभु जी की कृपा हो जाती है। तो इस स्कंद में प्रचेताओं के कार्य, इस अध्याय में प्रचेताओं के कार्यकलाप का वर्णन है। प्रचेता कौन थे? महाराज प्राचीन बर्हिषत के पुत्र थे, 10 पुत्र थे, और ये 10,000 सालों के लिए समुद्र के अंदर रहकर तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या करके आए, इनको शिव जी की कृपा मिली, शिव जी की कृपा से भगवान की कृपा मिली, भगवान ने उनको वरदान दिया। और अब बताया जा रहा है, ये नारद मुनि का संवाद चल रहा है शायद, कि प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वे स्वर्ग लोक को चली गई। तो एक कंडू ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव को अपने पद से बहुत आसक्ति है, तो उनको डर लगने लगता है कि कोई भी ज्यादा तपस्या करेगा तो इंद्र मेरे पद पर आ जाएगा, मेरे पद को ले सकता है। तो उनकी आसक्ति है, तो वो उस ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते। जैसे पिछले अध्याय में पढ़ा, महाराज पृथु भी जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग रहे थे इंद्र, कभी साधु का वेश धारण करके, कभी कोई वेश धारण करके, कि यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए, कि सोमा जो अश्वमेध यज्ञ अगर कर लिया तो वो इंद्र के पद के लिए योग्य हो जाएंगे, तो यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। हालांकि महाराज पृथु तो शक्तिवेश अवतार हैं, उनको इंद्र के पद की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फिर भी इंद्र को ये डर था। उसके बाद महाराज पृथु क्रोधित हो उठे, हो वो खुद ही इंद्र को मारने के लिए चले, तो ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं इंद्र को आप नहीं मारो, आपको जो है हम सारे यज्ञों का की पूर्ण आहुति का हम उसके बदले में वरदान देते हैं, आपको 99 यज्ञ करो, सोम यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो वहां महाराज पृथु को भी आशीर्वाद वरदान मिले। और यहां जो है, यहां ये इसलिए प्रसंग आ रहा है कि कंडू ऋषि और प्रमलोचा की जो कन्या उत्पन्न हुई, तो उनको जो प्रचेतों से कहा गया कि तुम सब इनसे शादी करो, तो एक ही स्त्री थी और 10 पति थे, और फिर भगवान ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम ये शादी करो, एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र फिर बहुत अच्छा राज्य करेगा, और तुम जब इस तरह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके मेरे को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ जीवन में रहोगे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताई की। तो गृहस्थ जीवन में जब रहोगे इस तरह, तो फिर उसके बाद मेरे को ध्यान करोगे और मेरे ही धाम को वापस आओगे। पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने इंद्र की ईर्ष्या के ऊपर ज्यादा वर्णन किया है, क्यों इंद्रदेव जो है, हालांकि हैं इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं, और कृष्ण जो है, कृष्ण के लिए भी यही कहा गया ना, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, इंद्र के शत्रुओं का संहार करने के लिए वो हर युग में प्रकट होते हैं, और इंद्र के छोटे भाई के रूप में भी प्रकट हुए उपेंद्र वामन देव। ऐसा नहीं है, इंद्रदेव की जो जो पोजीशन है, स्थिति है, बहुत ऊंची है, देवताओं के भी राजा हैं, सब देवताओं के, कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है। श्रीमद् भागवतों में बार बार उनकी इस कथा का वर्णन आता है कि बहुत जगह वो ईर्ष्या कर लेते हैं या काम के वश में आ जाते हैं। भागवतों में इसलिए चर्चा होती है ताकि हम उससे सीख सकें। ईर्ष्या करने से ईर्ष्या का स्रोत क्या है? हम इंद्रदेव जब ईर्ष्या के वश में आ सकते हैं तो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग ईर्ष्या के वश में कैसे नहीं आएंगे? छह प्रकार के अनर्थ बताए गए ना हमारे हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, और ये सबसे आखिरी अनर्थ है। जब हमारे हृदय की भी सफाई होने लगती है, आदो श्रद्धा तदो साधु संगा, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया जब करते हैं तो अनर्थों की निवृत्ति शुरू होती है। निवृत्ति अनर्थ मतलब खत्म होने लगते हैं। आखिरी अनर्थ है ईर्ष्या, सबसे आखिरी। क्यों? क्योंकि इस खत्म होने में सबसे मुश्किल यही है, ये नहीं खत्म होता। जयपतक महाराज ने भी अपनी किताब वैष्णव के में लिखा है, बाकी सारे अनर्थ जो हैं किसी ना किसी तरह हम शुद्ध करके कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, पर एक ये अनर्थ है ईर्ष्या, ये किसी भी तरह कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता। सबसे खतरनाक है, वो सबसे आखिरी है और सबसे मुश्किल है इसको हटाना। ईर्ष्या मतलब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है और हम समझते हैं हम उसके ज्यादा अधिकारी हैं, उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। हम सब अपने हृदय में झांक कर देख सकते हैं कि हम सब इस ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं, कभी ना कभी तो होते ही होंगे। इस अधिकारी के पास ये पदवी है, ये टाइटल है, मेरे पास होना चाहिए। इसके पास ये अधिकार है, मेरे पास होना चाहिए, मैं अच्छा कर सकता हूं। हम सबके हृदय में है ये अनर्थी, तो भरे पड़े हैं। अगर ये अनर्थ ना होते तो हम भौतिक जगत में क्यों होते थे? वे भगवान के धाम में होते थे। हम सबके हृदय में, उसको भगवान की कृपा मिली, आज उसको इस अमुक भक्त को जो है भगवान की माला मिली, मेरे को मिलनी चाहिए थी, मेरे को क्यों नहीं दी? ईर्ष्या। उसको राधा रास बिहारी जी का वैसे ही वो राजभोग का समोसा बहुत फेमस है, इसको राजा रास बिहारी जी का समोसा मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? मेरे को मिलना चाहिए था। ये व्यक्ति, ये भक्त जो है इतना अच्छा कीर्तन कैसे करता है, मैं कर सकता हूं। ये इतनी अच्छी क्लास कैसे दे सकता है, ये श्रृंगार क्यों अच्छा कर सकता है? हमारे हृदय में है ईर्ष्या है, और फिर और ऊपर उठते हैं। ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि हमें क्वालिटी है नहीं, योग्यता है नहीं, और हम अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा अच्छा भक्त हूं। तो दो गुरुओं के भी शिष्यों में इस तरह ईर्ष्या आती है, मेरे गुरु इनके गुरु से ज्यादा अच्छे हैं तो मैं इनसे ज्यादा अच्छा हूं। हालांकि दोनों गुरुओं में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे गुरु इनके गुरु से ज्यादा अच्छा कीर्तन करते हैं तो मेरी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, ये मेरे गुरु इनके गुरु से ज्यादा अच्छी क्लास देते हैं, ये दिखने में अच्छे हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, उनके शिष्य ज्यादा हैं। हम ये देखो ईर्ष्या का क्या क्या कारण लेके चलते हैं। या फिर एक ही गुरु के शिष्य हैं, मेरे शिक्षा गुरु जो हैं इनके शिक्षा गुरु से ज्यादा अच्छे हैं तो मैं इनसे ज्यादा अच्छा हूं। क्यों? हम अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, ईर्ष्या है। और ऊपर चले तो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं हम लोग। भगवान क्यों इतने साज श्रृंगार लेते हैं, इनको रोज इतना अच्छा अच्छा भोग लगता है, रोज अच्छी अच्छी माला पहनाई जाती है, मेरे लिए होनी चाहिए। इसी ईर्ष्या की वजह से तो हम आध्यात्मिक जगत से वापस आए, इस भौतिक जगत में नीचे आ गए। भगवान से ईर्ष्या थी ना, भगवान क्यों सेंटर में है, हम क्यों नहीं। इसी ये अनर्थ तो खत्म करने हैं, ईर्ष्या सबसे मुश्किल है खत्म करना। छह वेग दमी छह दोष शोधी, छह गुण देहदास, इतने सारे दोष हैं कैसे खत्म होंगे। जितने भी असुरों की कथा आती है श्रीमद् भागवत में और पुराणों में और शास्त्रों में, और क्या है, वो सब के सब भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। रावण ने भी क्या किया था, राम से द्वेष किया था, ईर्ष्या की थी। सीता उसके पास क्यों है, सीता तो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे भोगने के लिए है। राम तो मामूली सा वन में भटकने वाला आदमी है, मैं देखो लंका का राजा जो सोने की है लंका उसका स्वामी हूं, तो राम के पास थोड़ी होनी चाहिए सीता सुंदरी, मेरे पास होनी चाहिए। ईर्ष्या, हिरण्यकश्यपु ने भी तो यही चाहा था, इतनी तपस्या कर ली। तपस्या करने के लिए सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, और हिरण्यकश्यपु ने जैसी तपस्या की, वैसे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं आता किसी और व्यक्ति ने ऐसी तपस्या की होगी। सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके संयमित करके तपस्या की, सारे शरीर को भी उसके चींटियों ने खा लिया था, नहीं किसी तरह उसने अपनी आत्मा को हड्डियों के बीच में रखा हुआ था, और वो तपस्या की थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो क्या चाहिए, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बना दूं। तो ठीक है, उसने घुमा फिरा के ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि किसी भी तरह मेरी मृत्यु ना हो। वो आजकल के युग में होता तो बहुत अच्छा लॉयर होता था वकील, इतना घुमा फिरा के उसने बात की थी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। पर मांगा क्या, कि किसी भी तरह मेरी मृत्यु ना हो, मैं सबको पराजित कर सकूं, सबको हरा सकूं, कोई मेरे से जीते नहीं। पर सारी कंडीशन लगा दी किस लिए, कि विष्णु से ईर्ष्या। देवताओं के 100 वर्षों तक उसने तपस्या की थी, और 5 साल का उसका ही अपना पुत्र प्रह्लाद महाराज जब सामने आए, प्रह्लाद से पूछा कि तुम्हें ये शक्ति कहां से मिल रही है, तो प्रह्लाद कहते हैं आप जहां से मेरे को मिलते, जहां से आपको मिलती है वहीं से मेरे को मिल रही है, विष्णु से। विष्णु, विष्णु का नाम सुनते ही भगभगटे। 5 साल के प्रह्लाद महाराज का कुछ नहीं कर पाए हिरण्यकश्यपु, और जहां इतना प्रह्लाद महाराज के प्रति अपराध कर दिया, नरसिंहदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मार दिया। कहां 100 देवीय वर्षों तक तपस्या की थी, और कहां 5 साल में सब कुछ खत्म। 5 साल तक ही राज्य किया, क्योंकि उतने टाइम जब प्रह्लाद महाराज प्रकट हुए और 5 साल के थे तब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, नरसिंहदेव जी आए हिरण्यकश्यपु को मार दिया। पर था क्या मुख्य कारण, विष्णु से ईर्ष्या थी कि क्यों विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं ऐसे ऐसे वरदान लूंगा कि विष्णु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये ईर्ष्या ही तो है। और ये ईर्ष्या की वजह से ही हम इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास क्यों। पर आध्यात्मिक जगत है इसका एकदम उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, हम सब जो है मिलकर अगर कृष्ण की सेवा करें तो कृष्ण को ये पसंद है आध्यात्मिक जगत में। हमारे दीक्षा के बाद हम सबके नाम के आगे दास क्यों लग जाते हैं? हम एक दूसरे के दास हैं। जब दासत्व की भावना होगी तो ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। जब सेवा करने की भावना होगी तो ईर्ष्या कहां से आएगी? तत्यनुकंपाम सुम समीक्षमान भुंजाने वात्मकृतम विपाक। कि कुछ भी मेरे साथ हो, बजाय इससे कि ईर्ष्या हो, द्वेष हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे अपने भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम मेरे अपने कर्मों की वजह से मुझे ये मिल रहा है, तब ईर्ष्या नहीं हो सकती। झूलन यात्रा का समय है आजकल, परसों से झूलन यात्रा शुरू हुई। झूलन यात्रा में क्या है? राधा कृष्ण झूले पे बैठे हैं, सब गोपियां जो है उन्हें झूला झूला रही। कभी कहीं सुना कि एक गोपी जोर से धक्का दे रही है, एक उसको हल्के से धक्का दे रही है, एक रोक रही है, नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा करो। झूलन यात्रा का और क्या मतलब है? सब गोपियां जो हैं प्रेम से राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनको झूला झुला रही हैं ताकि राधा कृष्ण को झूले में झूलने का आनंद प्राप्त हो। तो जब हम भी झूला झुलाते हैं भगवान को, झूलन यात्रा का अवसर है। अगर हम सब मिलकर कोऑपरेट करके अच्छे से भगवान को झूला झुलाएं तो ये भगवान को पसंद होगा ना। तो यही तो है, एक दूसरे से सहयोग देके। पिछले के श्लोकों में आया है, भगवान ने कहा है कि तुम सब भाइयों का आपस में बहुत सहयोग है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। कोऑपरेशन है, यही तो प्रभा जी ने कहा था ना, इफ यू लव मी यू विल कोऑपरेट। भक्ति में आने का, भक्तों के संग में रहने का वास्तविक उद्देश्य यही है कि आपस में कोऑपरेशन हो, ईर्ष्या ना हो। तो इतने सारे ये उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, किस लिए? सब लोग जो हैं कोऑपरेट करकर राधा कृष्ण की सेवा में जुड़े। किसी भक्ति कुछ सेवा है, किसी कुछ, कोई फूल माला बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई झूले के लिए झूले के सामने खड़ा है ताकि गलत तरीके से ना झुलाया जाए, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, किस लिए? राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा के लिए। जैसे वो एक प्रभा जी एक कथा बताते हैं ना कि एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे, दोनों शिष्य जो हैं गुरु जी के चरण दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे, दोनों एक एक चरण दबा रहे थे। अब एक शिष्य ने दूसरे से कहा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे दबाया था, तुम ठीक से नहीं दबा रहे हो। दूसरे का, नहीं 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 मुझे पता कैसे दबाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे दबाया जाता है। तो पहले शिष्य ने जोर से हाथ मारा गुरुजी की टांग पे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे दबाया जाता है। दूसरे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे दबाया जाता है। दोनों मार रहे हैं गुरुजी को, मार रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, चुभो रहे हैं, अपना अपना पॉइंट रखने के लिए। पर दर्द किसको हो रहा है? दर्द तो गुरुजी को हो रहा है ना, और दोनों में ईर्ष्या, दोनों में लड़ाई हो रही है। तो जब हमें भी ईर्ष्या है, ईर्ष्या रहेगी, तो कहां से कृष्ण प्रसन्न होंगे, कहां शिला प्रभा जी प्रसन्न रहेंगे? तो ईर्ष्या इस चीज का मूल कारण है कि हम ठीक से सेवा नहीं कर पाते। ईर्ष्या इस बात का मूल कारण है कि हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाते। मूल कारण ईर्ष्या। काम खत्म किया जा सकता है, क्रोध लोभ मोह आराम से, मद भी, पर जो मत्सर्य है इसकी वजह से हमारी जो प्रगति है रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या करते हैं, और जहां ईर्ष्या करते हैं वहां सेवा कर ही नहीं सकते। जहां ईर्ष्या होगी वहां प्रचार भी नहीं हो सकता। प्रचार जो है कंपैशन से होता है, करुणा से होता है, ईर्ष्या से नहीं होता। जहां ईर्ष्या है वहां करुणा आ ही नहीं सकती। जहां ईर्ष्या वहां सेवा की भावना भी नहीं आएगी। रोज सुबह हम करते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश करके फटाफट भाग जाते हैं। मतलब क्या है इसका वांछा कल्प तरुभ्यश, कि सारे वैष्णव जो है कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। क्या हम मानते हैं? वैष्णव यही वैष्णव है और कहां से, दिल्ली से कोई वैष्णव नहीं आने वाला कि दिल्ली वाले ही कल्प वृक्ष हैं, ऐसा कुछ नहीं। वैष्णव मतलब वैष्णव, यही वैष्णव है, कल्प वृक्ष है। हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, सेवा की भावना नहीं है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, एक तरफ तो हम मांगते हैं हरे कृष्ण कहते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और दूसरी तरफ ईर्ष्या करेंगे नहीं हमारी सेवा में सब कुछ लगना चाहिए। तो कहां से वो मेल कहां से बैठेगा? भगवान कहते हैं गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम कौन है? भगवान है। हर यज्ञ हर तप के जो एंजॉयर हैं कौन है? भगवान है। और यही राधा रास बिहारी हैं। राधा रास बिहारी क्या? जो रास में विहार कर रहे हैं, रास में आनंद ले रहे हैं, रास लीला में। और राधा रास बिहारी हमें बुला रहे हैं, मेरी रास लीला में आओ, एंटर करो। पर हम रास लीला में कृष्ण बनकर एंटर नहीं कर सकते। कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण बन के एंटर नहीं किया जा सकता। मतलब भोक्ता बन के एंटर नहीं कर सकते, सेवक बन के एंटर कर सकते हैं। वो सेवा की भावना तभी आएगी जब ईर्ष्या खत्म हो। वो सेवा भी किसकी? कृष्ण भी कहते हैं कि जो कहता है वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मेरे भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। दास 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 अनुदास, चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया। जब ये भावना आएगी तब ईर्ष्या खत्म होगी, तब हम भगवान के धाम में एंटर करने के लायक बनेंगे। जब तक कंट्रोलर बनने की इच्छा है, ईश्वर बनने की इच्छा है, तब तक धाम में नहीं जा सकते। सेवा कुछ भी हो सकती है, सेवा हो सकती है कि मैनेजमेंट की सेवा हो, पर वो सेवा भी आंतरिक जो भावना है वो सेवा की होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नहीं, तब हम धाम में जाने के लायक बनेंगे। सब भक्तों की सेवा की इच्छा होनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। वो कब होगी? जब ईर्ष्या खत्म होगी। तो जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है, तो सबको पता है कि कृष्ण के जन्म से पहले देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा था। उसके बाद बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए और फिर कृष्ण प्रकट हुए थे। तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि देवकी के जो 6 पुत्र हैं ये भी इन 6 अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे हृदय में है। 6 अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो जब ये 6 अनर्थ खत्म होंगे, जब हम वसुदेव तत्व में, विशुद्ध सत्व तत्व में स्थित होंगे, वसुदेव मतलब विशुद्ध सत्व, सत्वगुण से भी ऊपर, जब हम उस तत्व में स्थित होंगे, बलराम जी जो आदि गुरु हैं, आदि गुरु के रूप में आएंगे, अपने हल से हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाएंगे, तब जो है उसमें कृष्ण के प्रेम का पौधा लगेगा, तब जो है कृष्ण प्रेम प्रकट होगा, मतलब तब कृष्ण प्रकट होंगे। तो पहले ये अनर्थ खत्म करने। तो ये अनर्थ कैसे खत्म होंगे? हमें तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है हम ये अपने हृदय के अनर्थ खत्म कर सके। तो ये अनर्थ खत्म करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इसलिए कहा चेतो दर्पण मार्जनम। जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं या संघ में कीर्तन करते हैं, सब मिलकर कीर्तन करते हैं, तब हल्के हल्के क्या होता है, भगवान श्रीमद् भागवतम में बताया गया दूसरे स्कंद में कि भगवान विष्टे हृदय क्षणवताम क्षणवताम श्रद्धा नित्यम। जब हम नित्य श्रद्धा से श्रवण करते हैं भागवतम क्लास में और जप के समय कृष्ण नाम जब लेते हैं, तब कर्ण रंध्रेन प्रविष्ट करण रंध्रेन, कर्ण रंध्र से, कर्ण कान के छिद्र से नाम जो है हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, तब भगवान जो है उस हृदय की नाम नाम प्रभु जो है हमारे हृदय की सफाई करते हैं, हमारे हृदय में जो अनर्थ है उनकी सफाई होती है। जब वो सफाई होती है तब कहीं जाके हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो जब ये हरि नाम हम पूरी गंभीरता से प्रेम से लेते हैं तब हमारे हृदय की सफाई होगी, जब श्रद्धा से लेते हैं तब सफाई होगी। इसलिए बताया गया नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। इसलिए डेली जो है ये भागवत सेवा, इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया सुबह भागवतम का पाठ होना चाहिए, शाम को भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, डेली करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। और जब हम ऐसी कथाएं पढ़ेंगे कि इंद्रदेव को ईर्ष्या हुई, रावण को, ये बाकी असुरों को, और कृष्ण ने आके उनका संहार किया, तो हम भी सोचेंगे कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें भी सेवा में लगना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब कहां से कुछ होने वाला। तो जब ये ईर्ष्या खत्म होगी तब कृष्ण जो है हमारे हृदय में प्रकट होंगे, तब जो है असली बलराम जयंती और तब असली जो है कृष्ण जन्माष्टमी का भी हमें असली असली जो फायदा होगा तब मिलेगा। तो यहीं विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी कर सकता है। माइक है?
परंतु हम प्रैक्टिकल में लाते नहीं लाते, क्या कारण हो सकता है कि हम इस नहीं, हमको सबको मालूम है हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, दास सब जानते, लेकिन प्रैक्टिकल पर नहीं हो पाता, इसके पीछे कारण क्या?
वो बताया गया ना, चार तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो सुनने से ही समझ जाते हैं, दूसरे हैं देख के समझते हैं, तीसरे हैं करते हैं फिर समझ जाते हैं, चौथे उसके बाद भी नहीं समझते। हम लोग उस कैटेगरी में हैं। दरअसल क्या है, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं लागू कर पाते क्योंकि हम अपराध बहुत करते हैं। इसका एकमात्र ही कारण है अपराध, और अपराधों का एकमात्र कारण है ध्यानपूर्वक जप ना करना। सब कुछ हरि नाम में बता दिया गया, नाम नाम आकारी बहुधा नित सर्व शक्तिस। भगवान कहते हैं मेरी सारी शक्तियां इसमें हैं, हरि नाम में सारी शक्तियां, मतलब हलादनी संवेद संधनी सारी शक्तियां हैं, कौन सी चाहिए, सारी हैं इसमें। तो हम नहीं उसका, हम उसका संग नहीं करते हैं, हम अपराध करते हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए ना, हमें जो वरिष्ठ भक्त हैं जो आगे हैं हमसे, उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह हम आगे बढ़ सकें, किस तरह हम अपना जप जो है अच्छा कर सकें। ये स्वतंत्रता भगवान सबको देते हैं, करना है नहीं करना अब आपके ऊपर, पर हमें तो करना चाहिए। जब हम भक्ति के मार्ग में आए हैं और यहां आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर द्वार, इसीलिए आए हैं हम भक्ति में आगे बढ़े, और आग जलाते रहे उसमें पानी डालते रहे, आग कहां से जलेगी। तो एकमात्र ही साधन है हरेर्नाम 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 एव केवलम। और यही भगवान ने द्वापर युग में तो कहा था गीता में, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज। और कलयुग में है सर्वधर्मान परित्यजे नाम एकम शरणम व्रज। पर हम लेते नहीं, शरण नहीं लेते।
दूसरा प्रश्न, जैसे हम छह अनर्थों में से पांच भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, तो छठवां अनर्थ तो है ही सबके हृदय में, तो भगवान की सेवा में नहीं लाया जा सकता, तो उसे निकाला कैसे जा सकता है?
छठे अनर्थ को हम खुद नहीं निकाल सकते, भगवान ही कृपा करके इसको साफ करेंगे। और भगवान या भगवान के भक्त, जब हम अपने आप को भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते हैं और सच्चे श्रद्धा से सच्चे हृदय से लगाते हैं, तो अनर्थ खत्म होगा, तभी तो होगा। यही ईर्ष्या ही तो सबसे खतरनाक है।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
इफ ऑर्डिनरी फादर सीज दैट हिज सन इज मिसयूजिंग द पॉकेट मनी, देन यू विल स्टॉप गिविंग हिम पॉकेट मनी, देन व्हाई डेमिगॉड्स आर ग्रांटिंग बुन्स एंड बेनिडिक्शन to unworthy people who make chaos thereafter and Lord has to come and all that? Why such things are happening again and again?
Demigods are bound to give benedictions. If somebody pleases them, somebody does some tapasya, austerity or some yajna for them, they are bound to give some benediction. It's just like Prabhupada has explained, if you go to a pan shop, panwala, if it's a small child, even if he gives the money, panwala is supposed to give him the cigarette. But if the same child goes to father, give me a cigarette, father will never give the cigarette. So if people do some yajna, then demigods are bound to give the benediction. But Krishna doesn't give the benediction. Krishna doesn't give what is harmful for our bhakti. Krishna will never give that.
In Bhagavad Gita, it is said that lust is the strongest evil.
Lust.
So, whether love is, lust is strongest or jealousy?
What is lust?
Kaam, krodh, lobh.
Lust means to enjoy my senses. And what is the main thing? Enjoy my senses. Why is Krishna enjoying? I should be the enjoyer. That is Irsha. When we have envious attitude towards Krishna, why Krishna is enjoying? It should be for my enjoyment, for my pleasure. That pleasure is lust, but we are envious of Krishna, that's why we want to enjoy separately from Krishna. Love is to engage everything in service of Krishna, and when we do that, lovingly, devotedly we do that, then automatically our senses are gratified. Automatically we enjoy. Enjoyment is always there. Devotees enjoy more than Krishna, but they enjoy in serving Krishna.
Thank you.
Prabhuji had a question. If devotees didn't enjoy more than Krishna, why Krishna would come as in the form of his devotee? He himself comes in the form of devotee to understand what are my qualities that Radharani enjoys, what is the nature of Radharani's love, or what is the enjoyment that she gets, what's the pleasure she gets. So he comes as devotee to understand. Yes.
हरे कृष्ण भगवजी।
हरे
जैसे जो ईर्ष्या है, अब हर एक जीवात्मा भगवान बोलते हैं गीता में, ममीमांसा जीवात्मा भगवान कौन से है, तो जैसे बाप के पास जो गुण है बच्चे के पास वो गुण रहेगा, तो अभी जैसे भगवान विभु है हम उसके अणु उनसे, तो भगवान के पास हमारे पास ईर्ष्या आया कहाँ से? फिर भगवान के पास तो नहीं है तो हमारे पास आया कैसे? हम लोग उनके अंश है, जो कुछ रहेगा तो उनसे आया होगा। जैसे सत्यभामा और रुक्मिणी कैसे आपस में झगड़ा करते थे, वो वो तो आध्यात्मिक ऐसे हम लोग उनसे अंत है ना, तो हम हुआ कैसे भी अगर भगवान
ईर्ष्या नहीं है आध्यात्मिक जगत में, ईर्ष्या नहीं है, कंपटीशन है, कोई हेल्दी कंपटीशन स्पर्धा है। अब वो भौतिक जगत में जब आता है तो ईर्ष्या बन जाती है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो दो ब्रह्मचारी हैं, तो एक ब्रह्मचारी जो है रोज सुबह सुबह टाइम से उठता है, अलार्म बजता है और टाइम से उठता है, मंगल आरती में जाना है। दूसरा थोड़ा लेजी है। अब अगर ईर्ष्या होगी तो उसका अलार्म बंद कर देगा कि ताकि ये ना उठे, मैं तो उठ नहीं रहा हूं, ये भी ना उठे। अगर कंपटीशन होगा वो कहेगा अलार्म बजा, ये उठ रहा है, मैं भी उठता हूं साथ में। अगर प्रेम होगा तो दूसरे को उठाएगा, प्रभु जी उठो चले। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। कंपटीशन अलग है, गोपियों में भी कंपटीशन है कि उसने कृष्ण के लिए अच्छी सी माला बनाई, मैं भी और अच्छी माला बनाऊं। ईर्ष्या नहीं है कि उसने माला बनाई, मैं उसकी माला छुपा दूं, अपनी माला लेके जाऊं। ऐसा नहीं है, सब साथ मिलकर सेवा करती हैं, राइट। इन भौतिक जगत इट इज एनवियसनेस, ओवर देयर इट्स जस्ट कंपटीशन, ए हेल्दी कंपटीशन। यहां ईर्ष्या है। मुझे अपने आप को बड़ा दिखाना, जबकि हमारी फिलॉसफी क्या, और दास के दास के दास के अनुदास बनना। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो भगवान के धाम जाने के लायक हैं। जब तक हम मालिक बनते रहेंगे, प्रभु के प्रभु के प्रभु के भी प्रभु बने रहेंगे, यहां रहेंगे। चाहे सेवा के हिसाब से अलग हो सकता है, अगर कोई टेंपल प्रेसिडेंट है उनका काम है मैनेजमेंट, तो अंदर से भाव सेवा का है तो ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे?
प्रमलोचा और कंडू से जो पुत्री हुई, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रमलोचा उस पुत्री को वृक्षों को हवाले करके चली गई स्वर्ग में, तो वृक्षों ने उसका पालन पोषण कैसे किया?
वो अगले श्लोक में बताया है कि चंद्रलोक, मतलब चंद्रदेव जो थे, उन्होंने शिशु की भूख को खत्म करने के लिए अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी, तो चंद्रदेव ने उसका पोषण किया था। क्योंकि चंद्रदेव ही वृक्षों का पोषण भी चंद्रदेव करते हैं, तो शिशु का भी पोषण चंद्रदेव ने किया था। तो भगवान अरेंज कर देते हैं।
स्वर्ग की अप्सरा में भी इस तरह की ये निर्दयता है, अपनी पुत्री को जन्म दे करके भाग गई, तो उसका उत्तरदायित्व बनता था ना उसका पोषण करना।
उत्तरदायित्व है, पर वो एक स्पेशल काम के लिए आई थी और काम होने के बाद चली गई। उत्तरदायित्व तो है, ये बात तो है।
तो आज की स्त्रियों में अगर ऐसी भावना है तो इसमें क्या आश्चर्य है, जब स्वर्ग की अप्सरा में इस तरह की।
आजकल की स्त्रियों में अगर ऐसी भावना है तो क्या आश्चर्य है। पर उनको इंद्रदेव नहीं भेजते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक खास काम के लिए। तो जैसे अभी पूतना की कथा आएगी, जब भगवान ने 6 दिन के थे तो पूतना का वध किया, तो पूतना और आजकल की स्त्री में अंतर है। पूतना ने कम से कम दूसरे के बच्चों को मारा था, आजकल स्त्री अपने ही बच्चों को मार देती। कम से कम पूतना अच्छी थी फिर भी। ठीक है। और सिद्धिलाल समात, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज एनलाइटन अस। माता इतनी सीनियर हैं, मेरे को कहा जाता है माता के सामने बैठ के प्रवचन कैसे। एनीथिंग यू वांट टू से माता? और किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमनंदी।